السلام علیکم. آج جمعرات ہے، جنوری کی 19 تاریخ. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ. امریکہ نے کہا ہے کہ اس کے حکومتی حلقوں میں پاکستان کی معاشی صورتحال موضوع بحث ہے، اور واشنگٹن اسلام آباد کو معاشی طور پر پائیدار حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بدھ کے روز ہفتہ وار بریفنگ کے دوران پاکستانی معیشت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک چیلنج ہے جس سے ہم واقف ہیں. نیٹ پرائس نے کہا کہ جہاں تک ہو سکتا ہے امریکہ اپنے پاکستانی پارٹنر کی بھرپور حمایت کرتا ہے، لیکن یہ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے درمیان کی بات چیت ہے. امریکہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان کی ابتر معاشی صورتحال کے باعث دیوالیہ ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور ملک میں عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط پوری کرنے کے لیے منی بجٹ لانے کی بھی اطلاعات ہیں. وزیراعظم شہباز شریف نے 6 فروری کو اعلان کیا تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان کے 7 ارب ڈالر کے پروگرام کے 9ویں جائزے کو حتمی شکل دینے کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کرے گی، جو گزشتہ سال نومبر سے نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا ہے. تاہم 13 دن گزر جانے کے بعد بھی آئی ایم ایف کی ٹیم نہ ہی پاکستان آئی ہے، اور نہ ہی اس کی جانب سے پروگرام جاری رکھنے کے حوالے سے کوئی ٹھوس پیش رفت سامنے آئی ہے، جبکہ دوسری جانب اسلام آباد میں معاشی افراتفری کے سائے مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں. حکومت جائزے کو حتمی شکل دینے سے قبل آئی ایم ایف کے مطالبات کو پورا کرنے سے گریزاں نظر آ رہی ہے، جس سے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، ایکسچینج ریٹ کا تعین مارکیٹ کرے گی، ڈیزل پر پی ڈی ایل کو 50 روپے تک بڑھایا جانا ہے، اور بجلی گیس سمیت دیگر یوٹیلیٹیز پر دی جانے والی تمام سبسڈیز کا خاتمہ بھی ضروری ہے. تجزیہ کاروں کو حکومت اور آئی ایم ایف کی جانب سے معاہدے کے لیے راضی ہونے تک کسی ریلیف کے آثار نظر نہیں آتے. سعودی عرب نے ممالک کو مالی مدد فراہم کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس کے تحت مستقبل کی امداد کو ان ممالک کی طرف سے معیشتوں کو بہتر بنانے کے وعدوں سے مشروط کیا جائے گا. سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے بدھ کو سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیواس میں ورلڈ اکنامک فورم میں کہا کہ ہم امداد اور ترقیاتی امداد فراہم کرنے کا طریقہ بدل رہے ہیں. الجدان نے ایک پینل بحث کے دوران کہا کہ ہم کثیر الجہتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے. اس پینل میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جارجیوا بھی شامل تھیں. خلیج کی معروف سنی طاقت اور دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمد کنندہ نے طویل عرصے سے خطے کی پریشان کن معیشتوں کے لیے اربوں ڈالر مالیت کی گرانٹس اور ڈپازٹس کے ساتھ امداد فراہم کی ہے. ابھی حال ہی میں اس نے پاکستان سمیت مختلف ممالک کو مستحکم کرنے میں مدد کی ہے. پاکستان نے ایران کی سرحد سے متصل جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سرحد پار سے مبینہ عسکریت پسندوں کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان میں سرحد پار سے ہونے والے حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دے. فون کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ عسکریت پسندوں نے پنجگور میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر ہونے والے حملے کے لیے مبینہ طور پر ایران کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے 4 پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کی جان لے لی. جبکہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعے کو ایک بیان میں ایرانی حکام سے ان کے بقول سرحد پار سے ہونے والے مبینہ حملے کی تحقیقات کو یقینی بنانے اور اس واقعے کے مرتکب افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے نے ایک ٹویٹ میں पाकिस्तान ईरान सरहद पर होने वाले इस वाकये को एक दहशतगर्द हमला करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है और दहशतगर्दी को पाकिस्तान और ईरान का एक मुश्तरका मसला करार दिया है। अफगानिस्तान के बारे में एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हकूक के मुहाफिजों को तालिबान की हुक्मरानी के तहत संगीन खतरात का सामना है। सर्वे में शामिल इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले 663 अफगान मुहाफिजों में से मुतादिद को तशद्दुद, अगवा और नफसियाती नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि खवातीन को ज्यादा शदीद ज्यादतियों का सामना करना पड़ा है। अफगानिस्तान ह्यूमन राइट्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के कंसोर्शियम की तरफ से आज जारी किए गए एक सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में इंसानी हकूक के मुहाफिजों और मुल्क से चले जाने वालों को मुसलसल खतरात का सामना है। इस कंसोर्शियम को फ्रीडम हाउस ने अफगान कैनेडियन सिविल सोसाइटी फोरम के तआवुन से ये जायजा मुरतब करने की सहूलत फराहम की थी। यूएन वीमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बाहुस ने बुध को काबुल में तालिबान के नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुस्सलाम हनफी से बात करते हुए अफगानिस्तान के लिए फलाही इमदाद को खवातीन के हकूक से मरबूत किया है। उन्होंने कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान की अख्तार और सकाफत की बुनियाद पर खवातीन के लिए मौके तलाश करने चाहिए। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा का एक आला सतही वफद डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आमना मोहम्मद की क़यादत में पीठ से काबुल में है। भारत में इस हफ्ते जारी होने वाले आईटी कानून की तजावीज के मुताबिक हुकूमत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी ऐसी मालूमात को पोस्ट करने की इजाजत नहीं देगी जिन्हें झूठा या गलत करार दिया गया हो। यह कानून उन ताज़ातरीन इकदामात में से एक है जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत बड़ी टेक कंपनियों पर पाबंदियां आयद करने की कोशिश में कर रही है। कानून के तहत ऐसी किसी भी मालूमात की इशात को रोका जा सकेगा जिसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या हुकूमत की तरफ से हकायक जानने की मुख्तार कोई दूसरी एजेंसी या हुकूमत का कोई ऐसा महकमा जो इस तरह के मामला देखता हो जाली या गलत करार देते। हुकूमत ने अक्टूबर में ऐलान किया था कि सारिफीन की उन शिकायत के जाली के लिए एक पैनल कायम किया जाएगा जो सोशल मीडिया कंपनियों के मवाद में एतदाल लाने के फैसलों के बारे में होगी। भारत के चोटी के पहलवानों की जानिब से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर गुज़श्ता 2 दिनों से गैर मामूली धरना दिया जा रहा है। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रजभूषण शरण सिंह और कोचेस पर जिंसी इस्तेहसाल का इल्जाम आयद किया है। धरने पर बैठे पहलवानों में मुतादिद नामी ग्रामी मर्द और खवातीन पहलवान भी शामिल हैं जिनमें कई ओलंपिक और कॉमनवेल्थ मुकाबलों में तमगा याफ्ता हैं। इन पहलवानों का मुतालबा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को सदर के ओहदे से हटाया जाए और नए कोच और फिजियोज मुकर्रर किए जाएं। ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से बीजेपी के रुकने पार्लिबान हैं। वो एक दबंग सियासतदान माने जाते हैं। वो साल सन 2011 से फेडरेशन के मुंतखब सदर हैं। उन्होंने बुध को नई दिल्ली में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में इन इल्जामात की सख्ती से तर्दीद की है। अमरीकी महकमे खारजा ने बुध को कहा कि नेपाल में इतवार को होने वाले तैयारे के हादसे में हलाक होने वाले अफराद में से 2 अमरीकी शहरी थे जबकि 2 दीगर मुसाफिर अमरीका में मुस्तकिल शहरियत रखने वाले बाशिंदे थे। येटी एयरलाइंस की परवास को हमालिया के दामन में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंचने पर उसको हादसा पेश आया जिसमें सवार तमाम 72 अफराद हलाक हो गए। महकमे खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने एक ब्रीफिंग में सहाफियों को बताया कि हम जहाज में सवार अफराद के अहले खाना के बारे में सोचते हैं और अमरीका इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की हर तरह से मदद करने को तैयार है। इस हादसे की तहकीकात जारी है जिसमें तैयारे के मैन्युफैक्चरर, यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी और फ्रांसीसी फजाई हादसात की तहकीकती एजेंसी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। तलाश करने वालों को हादसे के एक दिन बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स भी मिल गए हैं। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा ऑर्डन ने वजारत उर्दबा से अलहदा होने का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड में रवां बरस अक्टूबर में आम इंतखाबात होना है और इंतखाबात से कबल जसिंडा ऑर्डन के वजारत उज़्मा से अलग होने के ऐलान पर हैरानी का इजहार किया जा रहा है। जसिंडा ऑर्डन ने सन 2017 में महज 37 बरस की उम्र में न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होकर दुनिया की कम उम्र तरीन खातून सरबराह ममलुकत होने का एहसास हासिल किया था और अपनी सलाहियतों और कारकर्दगी की बदौलत सन 2020 में वजारत उज़्मा के लिए दोबारा मुंतखब हुई थीं। उनका कहना है कि वो तीसरी मुद्दत के लिए वजारत उज़्मा की जिम्मेदारी संभालने के लिए खुद को तैयार महसूस नहीं करती। उनकी जमात के अरकान आइंदा 3 रोज में पार्टी के नए सरबराह का इंतखाब करेंगे। अक्वामे मुत्तहिदा के सरबराह ने बुध के रोज आलमी इक्तसादी फोरम के इजलास में कहा कि दुनिया आबो हवा की तब्दीली और यूक्रेन में रूस की जंग समेत एक दूसरे से मुंसलिक मुतअद्दिद चैलेंजों की वजह से अफसुर्दगी की कैफियत में है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने यह पैगाम स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस के तफरीही मकाम सुइजस्की में आलमी रहनुमाओं और कंपनियों के आला इंतजामी अहदेदारों के एक इजलास में दिया। इजलास का माहौल उस वक्त उदास हो गया जब यूक्रेन में एक हेलीकॉप्टर के हादसे में यूक्रेन के वजीर दाखला और दूसरे अहदेदारों समेत 18 लोगों की हलाकत की खबर मिली। पेंटागन के एक सीनियर एहलकार ने बुध को कहा कि अमरीका नई ऐलान करदा फौजी सलाहियतों के साथ यूक्रेन में जंग और तकरीबन मुंजमद सरहदों की सूरत हाल तब्दील करने का ख्वाहां है और उसे उम्मीद है कि इससे रूसी अफवाज के खिलाफ कीफ को जंग में नई कुवत मिलेगी। लेकिन पेंटागन के आला पॉलिसी मुशीर कॉलिन काहल ने कहा कि पेंटागन अभी तक M1 एब्राम्स नामे जंगी टैंकों की फरहमी के लिए कीफ के मुतालबे को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। काबुल का यह बयान इस हफ्ते जर्मनी में अमरीकी रामस्टाइन एयरबेस पर दर्जनों ममालिक के आला दिफाई हुक्काम के इजलास से पहले सामने आया। इस इजलास का मकसद कीफ के लिए फौजी इमदाद को मरबूत करना है। अमरीका ने रूसी अफवाज के खिलाफ दिफा में यूक्रेन की मदद के लिए तकरीबन $24 बिलियन का वादा किया है, जिसमें इसमा ऐलान करदा $3.5 बिलियन का पैकेज भी शामिल है। अमरीकी हुकाम ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि सदर जो बाइडन की इंतजामिया से तवक्को है कि वो यूक्रेन के लिए स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियों की मंजूरी देगी। उधर जर्मनी पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो लेपर्ड जंगी टैंक यूक्रेन भेजे या कम अज कम तीसरे ममालिक से उनकी मुंतकली की मंजूरी दे, लेकिन ऐसा लगता है कि जर्मनी इस नौयत की इमदाद को एब्राम्स की फराहमी के बारे में अमरीकी फैसले के साथ मुंसलिक करना चाहता है। यूक्रेन ने जुमरात को अपने मगरबी इत्तेहादियों से अपील की कि वो यूक्रेन की अफवाज को रूसी फौज से लड़ने में मदद के लिए टैंक भेजें, क्योंकि रूस फौजियों हथियारों और फौजी साजो सामान की फराहमी की वजह से काफी फायदे में रहता है। वजीर खारजा देवेंद्री कोलिबा और वजीर दिफा ओलेक्सी रेजनकॉफ ने एक मुश्तरक बयान में यूक्रेन के दिफा को मजबूत बनाने में मदद करने वाले 50 ममालिक का शुक्रिया अदा किया। यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने जुमेरात को कहा कि वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और दीगर हुक्काम से मुलाकात के लिए कीफ जा रहे हैं। ट्विटर पर पोस्ट की गई एक वीडियो में मिशेल ने कहा कि यूक्रेनी बाशिंदे अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ साथ हमारी मुश्तरक यूरोपीय अख्तार और उसूलों के तहफ्फुज के लिए बरसरे पैकार हैं। मिशेल ने कहा कि उन्हें हमारी हिमायत की जरूरत है और वो उसके हकदार भी हैं। इराक में तिब्बी और सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि जुमेरात को खलीज कप के फाइनल से चंद घंटे कबल इराक में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से एक शख्स हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इराक पर तवील अरसे से बैन अलाक़वामी फुटबॉल मैचों की मेजबानी पर पाबंदी रही है और अब जंगजदा मुल्क अपने बारे में राय तब्दील करने के लिए गल्फ कप की मेजबानी पर एतमाद कर रहा था, लेकिन तंजीमी मामलात के लिए पहले ही उसे माजरत करना पड़ी। इराक के मरकजी जनूबी शहर बसरा में इराक और अम्मान के दरमियान फाइनल देखने की उम्मीद में बगैर टिकट के हजारों शायकीन सुबह से ही स्टेडियम के बाहर जमा थे। मैच का आगाज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे होना था। तिब्बी अमले के एक रुकन ने कहा कि एक शख्स हलाक और दर्जनों मामूली जख्मी हुए हैं। वजारत दाखिला के एक अहलकार ने भी यही आदाद और शुमार बताए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।